ओम शांति। सस्ता सौदा और बचत का बजट, ये टॉपिक है मुरली का, जो 15/1/1986 को चली थी। इसमें बाबा ने कहा है, रत्नाकर बाप बच्चे, रत्नाकर बाप अपने बड़े से बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। तो इसमें बाबा ने कहा कि सौदा इतना बड़ा और बच्चे इतने जन्मों जो 21 जन्मों के लिए माला माल बन गए। तो इसमें फिर बाबा ने कहा, थोड़ी भाग्य आई चलती चलती, तो बाबा ने कहा कि भाई बच्चे इतने साधारण होते हुए भी और जो सौदा ऐसा करते हैं, जो बड़े से बड़े भगवान को भी अपनी गोदी में ले लेते हैं, अपने अपने अंदर बांध लेते हैं। तो इसमें एक मैसेज आया था जो इस से रिलेटेड है। एक बच्चे से बाबा ने कहा, बच्चे बताइए मकान किसका है? कहा, बाबा आपका। और ये आपका परिवार? नहीं, ये बाबा आपका है। अच्छा, ये जमीन जायदाद बैंक बैलेंस? बाबा आपका है। तो कहा, बच्चे फिर तुम्हारा क्या है? कहा, आप हो ना मेरे। तो इसे आप कहने से बाबा को से कितना सस्ता सौदा हम कर लेते हैं। फिर दूसरा पॉइंट बाबा ने इसमें बोला है, बाबा अपने सौदागर बच्चों की लिस्ट देख रहे थे, जो नामी ग्रामी है, जिन्होंने बाबा से सौदा किया है, और ये जो बिल्कुल ना उम्मीद हो चुके थे वो उम्मीदवार बन गए, ऐसे बच्चों की बाबा लिस्ट देख रहे थे। और इसमें बाबा ने देखा कि जो मेरी डायरेक्टरी है उसमें भी बच्चों ने अपने नाम दर्ज करा दिए हैं। फिर तीसरा बाबा ने कहा, तीसरे में बाबा ने कहा कि मुझे है ना बाहरी बाहर मुखता है ना, वो पसंद नहीं है मुझे। चतुर सुजान बाप को भोले भाले बच्चे पसंद है, जो 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हैं, पद्मा पदम बन जाते हैं, निर्भय बन जाते हैं और बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। और इसके साथ साथ ही वो बच्चे मैपन के भय से मुक्त हो जाते हैं। चौथा बाबा ने कहा, चौथा पॉइंट है इसमें, दुनिया वाले तो ये सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली मनाते हैं, वर्षों के हिसाब से मनाते हैं, लेकिन आप बच्चों ने तो राज्य पद के अधिकारीपन का सौदा मेरे से कर लिया, जिसे तुम्हें अनेक पदों के अधिकारी बन जाते हो और इसके साथ साथ 21 जन्मों के लिए तुम्हारी वंशावली भी माला माल हो जाती है। और यही नहीं, द्वापर युग में भी तुम्हारे पास इतना पैसा होता है जो तुम दान पुण्य करते हो, और वो इसमें वर इसमें जो लास्ट समय चल रहा है इस पर भी तुम दाल रोटी आराम से खाते हो। उसके बाद बाबा ने पांचवा पॉइंट बोला, बच्चे ऐसा बचत का बजट बनाओ जो राज्य जो रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाओ। राज्य पद के अधिकारी हर जन्म में नहीं पास होगे, लेकिन इसको रॉयल फैमिली के अधिकारी बन सकते हो। फिर छठा पॉइंट बाबा ने बताया, दुनिया वाले तो जैसे वेस्ट को बेस्ट बना देते हैं, उसी तरह आप भी ऐसा बचत का संकल्प बनाओ जो संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति और समय की शक्ति को जैसे यूज करना चाहिए वैसे यूज कर सकते हो। जैसे साधारण दिनचर्या जो हमारी होती है उसमें हमने कमाया और न गवाया, लेकिन बाबा कहते हैं भाई कुछ ऐसा करो जिससे तुम कमा भी सको। लेकिन अगर हमने सारा दिन किसी को दुख भी नहीं दिया, कोई ऐसा कर्म भी नहीं किया, विकर्म भी नहीं किया, तो फिर हमने अच्छा सत्कर्म क्या किया? किसी को सुख दिया? ये हमें अपनी चेकिंग करके अपना बजट बढ़ाना है। फिर बाबा ने कहा, मैंपन और मेरेपन का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है, इसलिए अपने बोल और कर्म को हमें चेक करना है, क्या किसी को हमने सुख दिया, क्या किसी निरुत्साहित को उत्साहित किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, ये सारा हमें चेकिंग करके और अपना बजट देखना है। इसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ, बच्चे ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जिसमें आप अपनी चेकिंग करो कि जो भी तुम्हारे पास आए वो तुम्हारे से कुछ ना कुछ लेकर जाए, ऐसा नहीं कि जो आए वो कुछ लेके ही नहीं जाए। तो इसके लिए हमें देखना है कि भाई किसी को जीवन मुक्ति चाहिए, किसी को मुक्ति चाहिए, क्या हमको दे रहे हैं। और इसके साथ बाबा ने कहा, बच्चे ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाना, ये बाबा के जैसे 8 पॉइंट है। तो इसमें एक स्टोरी भी हमारे ऊपर लागू होती है, जैसे सत्यवान और सावित्री की कहानी सबने सुनी होगी, सुनिए। तो सत्यवान और सावित्री, जैसे सावित्री एक राजा की एक राजकुमारी थी, लेकिन सत्यवान एक लकड़हारा था। तो जैसे उनकी शादी तय हुई तो पता चला कि लकड़हारे की तो उम्र अभी 1 साल की है। तो उसके बाद माँ बाप ने उसकी शादी कैंसिल करने की सोची, तो सावित्री ने कहा नहीं, जोशी मैं शादी इसी के साथ कराऊंगी, चाहे इसकी उम्र 1 दिन की हो। जिस दिन 1 साल हुआ उस दिन वो लकड़हारे के साथ साथ वहां पर चली गई, उसने शरीर छोड़ दिया वहीं पे। धर्मराज उसको लेने के लिए आया तो वो बड़े प्यार से उसके पीछे पीछे चल रही है, लेकिन धर्मराज उसको कहता है कि बेटी वापिस चली जा, अब तुझे ये नहीं मिलेगा, सत्यवान नहीं मिलेगा। तो फिर भी वो पीछे पीछे चल रही है, तो कहा चलो मैं आपको 3 वरदान दे देता हूं, ये वरदान आप ले लेना, लेकिन सत्यवान को मत मांगना। तो उसने कहा नहीं मांगूंगी। तो उसने कहा मेरे सास ससुर हैं वो नेत्रहीन है, उनको नेत्र दे दो, और मेरे माँ बाप हैं वो पुत्रहीन है, उनको पुत्र दे दो, और सिर्फ मुझे 1 पुत्र दे दो। तो उन्होंने कह दिया ठीक है। तो उसने फिर भी वो पीछे पीछे चल रही है, तो कहा भाई आपके वरदान पूरे हो गए, अब साथ मत आओ क्योंकि आपको सत्यवान नहीं मिलेगा। तो कहा ठीक है, मैं तो भारतीय नारी हूं, आपने मेरी इच्छा तो पूरी नहीं की, क्योंकि पुत्र कहां से आएगा, आप सत्यवान को लेकर चले जाओगे। तो धर्मराज बंद गया, उसको सत्यवान को जिंदा करना पड़ा। तो हम सुबह सुबह क्या करते हैं बाबा के साथ, बताओ क्या करते हैं? बाबा ये बात है, बाबा देखो ठीक है ये लौकिक है, इसके लिए नहीं मांग रही, लेकिन मैं सर्व के लिए मांग रही, उसमें लौकिक भी तो आ जाता है ना बाबा, इसलिए करो। हम बाबा को भोलानाथ और भोलानाथ बना के और सब कुछ सुबह सुबह उनसे लेते रहते हैं। तो इसलिए हमें अपनी चेकिंग करनी है, अपने बचत के बजट को बढ़ाते रहना है। बहुत सस्ता सौदा, इससे सस्ता सौदा कोई हो नहीं सकता। ओम शांति,
ओम शांति। मुरली है 10 जनवरी 82। हेडी है कर्मातीत अवस्था की व्याख्या। तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन में कर्मातीत अवस्था के बारे में बाबा ने कहा था। बाबा ने कहा था पिछाड़ी में एक बाप की सिवाय कोई भी याद ना आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था देह की तरफ दृष्टि न जाए, कर्मातीत अवस्था भाई भाई की दृष्टि रहे, आत्मात्मा भाई भाई, कर्मेंद्रियां वश में हो जाए, कर्मेंद्रियों के वश में ना हो बल्कि कर्मेंद्रिय हमारे वश में हो जाए। तो कुछ एक बात यदि साकार मुरली में, तो इसमें 7 पॉइंट जो है 10 जनवरी 82 के मुरली में। पहला है राज्यसभा, दूसरा है दिव्य गुणों की चमकती मणियां, और तीसरा है अनुभूति, चौथा है ईष्ट देवों की प्रत्यक्षता, पांचवा है मास्टर रचता बन बेहद की पालना करो, प्रेम से पालना करो, और छठा है समीप संबंधी, हमारे समीप संबंधी हमको मिल गए। और सातवें के 2 पार्ट हैं, पहला है शिव शक्तियां, और सातवें का 2 पार्ट है बाप के मुख। ये 7 पॉइंट हो गए, पूरा हो गया। अच्छा चलो, तो पहला जो राज्यसभा है, तो बाबा ने राज्यसभा में क्या क्या देखा। बाबा ने राज्यसभा में स्वराज्य अधिकारी आत्मा देखी। बाबा ने कहा हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी है और हर बच्चा कर्मातीत स्टेज के आसनधारी है, लेकिन नंबरवार है। ये संगम युग, बाबा ने कहा संगम युग है ही स्वराज्य अधिकारी बनने का युग, कर्मातीत स्टेज के सिंहासन पर विराजमान रहने का युग है ये। तो इसमें बाबा ने कहा कि जो बच्चे सर्व अधिकारी हैं वो सर्व कर्मेंद्रियों को वश में रखते हैं। 2 प्रकार के बच्चे देखे, एक हैं सर्व अधिकारी, दूसरे हैं अधिकारी। तो जो अधिकारी हैं वो सर्व कर्मेंद्रियों को वश में नहीं करते, हैं अधिकारी लेकिन कभी कभी हैं, और सर्व अधिकारी हैं वो कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं होते, कर्मेंद्रियों को वश में रखते हैं, कर्म के बंधन में नहीं आते हैं। एग्जाम्पल दिया, जैसे भविष्य में विश्व महाराजा और महाराजा होते हैं तो दोनों में अंतर है। ऐसे विश्व महाराजा अर्थात सर्वाधिकारी, महाराजा अर्थात अधिकारी। तो ये पहला पॉइंट था कि बाबा ने राज्यसभा में बच्चे देखे। हैं सभी स्वराज्य अधिकारी लेकिन नंबरवार हैं, हैं सभी कर्माते स्टेज के आसन पर स्थित हैं, आसन को हो सिंहासन को हो लेकिन वो भी नंबरवार हैं। तो ये पहला पॉइंट था राज्यसभा में बाबा ने देखा। और दूसरा देखा दिव्य गुणों की चमकती हुई मणियां। तो बाबा ने कहा हर एक मस्तक पर मणियां चमक रही हैं, दिव्य गुणों की मणियां। हर एक बच्चे की मणियों की चमक अपनी अपनी है, किसी की ज्यादा है तो किसी की कम है। तो बाबा ने कहा जितने गुणों को धारण करते जाएंगे उतनी चमक बढ़ती जाएगी, और गुणों को धारण करते करते फिर वो प्रत्यक्ष होते जाएंगे कि यही कर्माती स्टेज की स्थिति पर स्थित रहने वाले बच्चे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। और इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष, नेक्स्ट पॉइंट जो अनुभूति से पहले इष्ट देव प्रत्यक्षता वाला था, इष्ट देव प्रत्यक्ष, अपने आप को इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष करो। फिर उसके लिए बाबा ने पांच बातें बताई। एक, अगर वो पांच बातों की स्मृति है, वो संस्कारों को इमर्ज रखते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से फिर नेक्स्ट है अनुभूति करा सकते हैं। तो वो पांच बात थी तीसरे पॉइंट की। सबसे पहले बाबा ने कहा कि अपने आप को हमेशा परम पवित्र आत्मा समझो। दूसरा, मास्टर सर्व के प्रति मास्टर रहम दिल, सर्व के प्रति मास्टर बरदाता, सर्व के प्रति मास्टर स्नेह के सागर, सर्व के प्रति शुभ भावनाओं के सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, और इष्ट देव। अगर ये संस्कार स्मृति में रहते हैं, इमर्ज रूप में रहते हैं, तो वो प्रत्यक्षता स्वतः होती जाएगी। और इस प्रत्यक्षता का परिणाम कि वो अनुभूति करेंगे, फिर वो अनुभूति करेंगे, नेक्स्ट चौथा पॉइंट आ गया, अनुभूति करेंगे कि यही हमारे हैं जिनसे हमको मिलना चाहिए था, जो हम इनसे चाहना रखते हैं वो ही हमारी चाहना पूरी करने वाले यही इष्ट देव इष्ट देवियां हैं। तो बाबा ने कहे ये संस्कार मर जगेंगे तो उनको ये अनुभूति होगी। तो इस अनुभूति के लिए हमेशा इष्ट देव की स्मृति में स्थित रहो तो वो अनुभूति कर पाएंगे। और इसके लिए साथ में बाबा ने कहा अनुभूति भी तभी करा पाएंगे साथ में अपना शक्ति स्वरूप याद रहे, शिव शक्ति स्वरूप। और शक्ति नहीं केवल शक्ति माँ भी साथ में, तुम बेहद के विश्व की जगत माता हो, एक बच्चे की माँ नहीं हो विश्व की माँ हो। तो बाबा ने कही स्मृति में रखो तो वो अनुभव करेंगे। फिर नेक्स्ट है अनुभूति करने के बाद मास्टर रचता बनो। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि संसार में भी नामधारी आत्माएं हैं जो मास्टर रचता होती हैं। शायद यहाँ भक्ति वालों को कहा होगा कि वो अपने साथ जोड़ते हैं, प्रेम का भी अनुभव कराते हैं, लेकिन वो बेहद के बाप का नहीं बना सकते, बेहद के बाप के साथ नहीं जोड़ते वो। तो यहाँ बाबा ने कहा तुम बच्चे मास्टर बेहद के रचता हो, वो भी पालना करते हैं, लेकिन तुम्हारी पालना अलौकिक पालना है, रूहानी पालना है, तुम बाप से जोड़ते हो तो उनको बाप से जोड़ो। और पालना का यहाँ बाबा ने एक माँ का एग्जाम्पल दिया, जैसे माँ बच्चों की पालना करती है, किसके किस लिए वो शक्तिशाली बनाती है, जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, जो भी समस्याएं आती है, विघ्न आते हैं, उनका सामना करने के लिए उनको शक्तिशाली बनाती है, विघ्न विनाशक बनाती है। उसी तरह तुम बच्चे भी यहाँ जो भी आत्म संबंध संपर्क में आती हैं या जिनकी तुम रचना करते हो तो मास्टर रचता वन उनकी प्रेम से पूरी पालना करो, उनको विघ्न विनाशक विघ्नों का विनाश करने के लिए उनके लायक बनाओ, उनको योग्य बनाओ, योगी बनाओ। तो ये था मास्टर रचता वन प्रेम से उनकी पालना करो, पांचवा पॉइंट हो गया। छठा है कि समीप संबंधी जो ये अनुभव करेंगे साथ में वो ये भी अनुभव करें कि ये हमारे समीप के संबंधी हैं। यहां भी फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिए, जैसे तुम बच्चे बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करते हो अलग अलग रूप में, जैसे तुम बच्चे कहते हो मेरा बाबा, ऐसे वो आत्मा भी कि ये हमारा परिवार है, ये मेरे हैं, उनको अपनेपन की अनुभूति हो, उनका भी पहले उनको रिलेशन मिलाओ फिर उनका कनेक्शन बाप से डालो, अपने तक सीमित नहीं रखो। लेकिन इसमें बाबा ने एक साथ में और भी अटेंशन दिलाया कि अगर हमारा ये अनुभूति हम उनको नहीं करा सकते हैं समीप संबंध की, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में बाबा ने कहा ये रहता है कि ये मेरा स्थान है, ये मेरी सेवा, ये मेरा जिज्ञासु है, मेरे सेंटर हैं, तो वहां मेरेपन का जब भाव रहता है तो वो बाप से नहीं जुड़ते हैं। इसलिए बाबा ने कहा इससे मुक्त रह के पहले उनको रिलेशन बनाओ फिर बाप से उनका कनेक्शन जोड़ो, तो बाप को बाप की उनको याद है, केवल आपके तक सीमित नहीं रहे। जैसे कल की मुरली में था बीज रूप बाप से कनेक्शन हो, साधनों से आत्माओं से नहीं, तो यहां भी वही बात लागू होती है। और यही स्थिति कर्मातीत स्टेज की स्थिति है, अर्थात मैंपन जैसे खत्म हो जाए, अपनापन अनुभव हो। और यहां भी मां का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहां भी वो मां अनुभव करे, जगत माता अनुभव करे आपको। और लास्ट में जो सातवां पॉइंट है, इसके दो पार्ट हैं, पहला है पार्टी हैं छोटी छोटी, एक है पहला है शिव शक्तियां। तो यहां बाबा ने कहा शिव शक्तियां अर्थात कंबाइंड, सदा शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं, तो सदा कंबाइंड अनुभूति में रहने वाले, सबको उसकी अनुभूति कराने वाले। और नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है बाप के मुख, हर बच्चा बाप का मुख है, मुख से अर्थात मुख से जैसे बाबा निकलता है, बाप का परिचय देते हो तुम बच्चे हो और बाप से उनका कनेक्शन जोड़ते हो, बाप से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराते हो, ऐसे तुम बच्चे बाप के श्रृंगार हो। जैसे अपने आप को गुणों से श्रृंगारते हो, ऐसे तुम बच्चे औरों को भी श्रृंगारने के लिए जा रहे हो, शायद विदाई समय के लिए बाबा ने कहा होगा, तो औरों को भी श्रृंगार करो। और जैसे तुम बच्चे खुशी में रहते ऐसे उनको भी खुशियां बांटो, उनकी खुशी की तालियां जैसे बजती रहे। तो ये सात पॉइंट थे 10.1.82 की मुरली के। सबसे पहला पॉइंट था राज्यसभा, राज्यसभा में क्या क्या देखा, हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी है, कर्मातीत स्टेज के सिंहासनधारी है। और दूसरा था पॉइंट था दिव्य गुणों की चमकती हुई मणियां, तो सारे गुणों की मणियां हमारे में मस्तक में कितनी चमक रही हैं, कम में या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तीसरा था इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्षता, चौथा था अनुभूति, पांचवा था मास्टर स्थापन, पूरी तरह से प्रेम की पालना करो, और छठा था समीप संबंधी, सातवां बाप के मुख हैं और शिव शक्तियां हैं। ओम शांति।
ओम शांति। अवैध मुली का डेट है 1986 का, टॉपिक है अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला है। जब बाप दादा है तो देखा है रूहानी, बाप दादा रूहानी रोज फ्लावर्स को देखा है बाबा ने। रूहानी रोज फ्लावर्स इस संगम युग पर ही बनते हैं, वो भी बाप दादा द्वारा ही बनते हैं। वो बाबा देखा हर एक गुलाब कितना रूहानियत का खुशबूदार है और कितना रूहानियत का खुशबूदार है और रूहानियत का किले हुए है। बाबा गुलाब को कंपेयर किया क्योंकि गुलाब माना सुंदरता। बाबा शरीर का सुंदरता नहीं देखा, आत्मिक सुंदरता को देखा, मतलब आत्मा कितना शक्ति और गुणों से सुंदरित हुए वो देखा बाबा के। और बाबा गुलाब का और एक विशेषता है, वो मतलब चारों तरफ कांटों के बीच में रहते हुए किला हुआ रहता है। वही बाबा देखा हम चारों तरफ से परिस्थितियां संस्कार की टक्कर कुछ भी हो जाए हम कितने किले हुए रहते वो देखा बाबा ने। नेक्स्ट बाबा ने बताया अमृत वेले के इम्पोर्टेंस के बारे में। हम सबको पता है अमृत वेला कितना इम्पोर्टेंट है। जब ब्राह्मण बनते ही पहला श्रीमद पालन करना होता है अमृत वेले। अमृत वेला पावरफुल जब होता है बाबा का मतलब मिलन का नशा हो, तो जब बाबा नीचे आता तो मिलन करने के लिए हम कितने नशे से करते हैं, मतलब बाबा से वरदान लेना है, बाबा से दृष्टि लेना है करके कितने नशे से करते हम चेक करना है। वैसे ही हम अमृत वेले भी उतना नशे से करते हैं क्या, तब भी अमृत वेला पावरफुल होगा और अमृत वेले का प्राप्ति अभी तब भी होगा, प्रभु पालना की और प्रभु मिलन का, बाबा से रूह रिहान करने का, और सब तभी होगा जब हम नशे में होंगे तो। और थर्ड पॉइंट है बाबा यूके वालों का टर्न था मिलन मनाने का। और बाबा का यूके वालों को एक शब्द बहुत अच्छा लगता है, वो है थैंक यू, क्योंकि थैंक यू वर्ड बहुत अच्छा लगता है। जब वो थैंक यू वर्ड इसलिए अच्छा लगता है दिल से वो बाबा को थैंक यू जब बोलते हैं ना, पहला प्रति बाप के प्रति ही रहता है, इसलिए बाबा को बहुत पसंद है। और नेक्स्ट यूके वाले निमित्त ये सेवा के लिए है, भिन्न भिन्न वर्ग वालों को, भिन्न भिन्न शक्ति वालों को, भिन्न भिन्न भाषा वालों को मिलकर एक बनाना, वो एक ब्राह्मण परिवार के भाषाओं में कन्वर्ट करना, ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने के निमित्त थे यूके वाले। और बाबा फिफ्थ पॉइंट है कि यूके बाबा बताते स्नेह के बारे में, जो चीज छोटी सी वस्तु वो स्नेह से देते हैं ना, वो हीरे समान वैल्यूबल रहता है, लेकिन बिना स्नेह के दिया तो जमा भी नहीं होगा, वैल्यू भी नहीं है करके बाबा ने बताया। और सिक्स पॉइंट है कि यूके वालों का ये विशेषता है कि वो सहज स्नेही भी है, यज्ञ स्नेही भी है और यज्ञ का सहयोग भी है। जो यज्ञ का सहयोगी होता है ना, वो सहज योगी बन सकता है, क्योंकि वो दिल से सहयोगी रहता है, इसलिए बाबा को पसंद है दिल से करने से बाबा। और इसलिए याद भी दिलाया दिलवाड़ा मंदिर को भी। और सेवेंथ पॉइंट है कि यूके वालों का फाउंडेशन से बहुत शाखे निकले हुए करके बाबा ने बताया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, वो सब शाखाएं ज्यादा निकले क्योंकि वो स्नेह और सहयोग की फाउंडेशन मजबूत है यूके वालों में, इसलिए वो शाखाएं ज्यादा निकला है करके बाबा ने।
ओम शांति। मुरली की डेट है 13 दिसंबर 1990। तो इस मुरली का जो टाइटल है, तपस्या का फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। तो मुरली जितनी मुरली है उतना ही पार्टियों के साथ बाप दादा ने मुलाकात की है। और इस दिन सतगुरुवार का विशेष दिन था और संतरी दादी जिन्होंने शरीर छोड़ा था इस दिन, अमृत वेले ही बाबा को याद करते हुए वो बाबा की गोदी में चली गई। तो संतरी दादी जो है बाबा का भतीजा दादा विश्व किशोर, उनकी वो धर्मपत्नी थी, युगल थी। तो ऐसे विशेष आदि रतन आवेक्त होने के बाद भी कुछ बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए हैं और बाबा ने बड़े सरलता से कह दिया कि देखो आना और जाना सबको ही है, खुशी खुशी आपने विदा किया ना, जाने दिया दादी को, और बिल्कुल आपको भी ऐसे एवर रेडी रहना है, ये बात वहां पर बाबा ने स्पष्ट की है। अभी मुरली के शुरुआत में हम आते हैं, स्टार्टिंग में बाबा ने कहा कि आज सबके स्नेह की दिल से क्या हो रही है, बाबा के ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही है, बाप दादा देख रहे हैं। और फिर बाप दादा ने कहा कि ये जो पुष्प है, जो दुनिया में हीरा है, कोहिनूर हीरा है, उससे भी क्या है, ये अमूल्य है। और फिर बाबा ने कहा कि गीत भी है, सबका एक ही गीत है, मेरा बाबा मेरा बाबा। फिर तपस्या करनी है, ये तो हमारा लक्ष्य है ब्राह्मण जीवन में, लेकिन उसका फाउंडेशन बाबा ने इस मुरली में बताया। अगर फाउंडेशन मजबूत है तो आपकी बिल्डिंग उतनी मजबूत होगी। तो इस तपस्या के फाउंडेशन को मजबूत कैसे बनाना है, तो बाबा ने कहा कि वैराग्य। तो इसमें विशेष चार बातें बाबा ने बताई है कि एक तो बच्चों को क्या बनना है, एक नामी, एक बाप दूसरा न कोई। फिर बाबा ने कहा कि एकांतवासी बनना है। फिर व्यर्थ से मुक्त कैसे बनना है, जैसे कि दो दिन से स्लोगन भी आ रहे हैं, कल का भी क्या था, व्यर्थ से मुक्त रहना है तो क्या करना होगा आपको, दृढ़ निश्चय का ठप्पा लगाना होगा। परसों क्या था, निश्चय का ठप्पा, तो उसमें था कि स्विच लगाना है मुख को, व्यर्थ ना निकल। तो इसमें जो है पहला पॉइंट है कि प्यार, हमारा बाबा से प्यार है, हम स्नेह के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, बाबा का भी हमारे प्रति स्नेह है, लेकिन रिटर्न देने की बात है। तो साकार का उदाहरण यहाँ पर दिया है कि साकार में जब बाबा थे प्यार दिया, फिर आवेक्त रूप में आकर, माना साकार सामने आकर भी बाबा मिल रहे हैं, ऐसे बाबा ने कहा कि आपको भी कैसे मिलन होना मनाना है, आपको भी व्यक्त से अव्यक्त होके मिलन मनाना पड़ेगा उस स्टेज में समान होकर। तो पहला पॉइंट है प्यार, और प्यार में हमें क्या होना है, समान होना है और समान बन करके। तो ये होगा बाबा ने कहा सच्चा प्यार। दूसरा पॉइंट है तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। तो हमने पहले देखा कि तपस्या अर्थात एक का बनना, एक नामी बनना, फिर बुद्धि को एकाग्र करना है बाबा की तरफ। अगला पॉइंट था कि एक रस स्थिति, अनेक रसों से निकल करके एक रस स्थिति, और व्यर्थ से बचना अर्थात इकोनॉमी से चलना। इकोनॉमी जैसे दुनिया में भी है ना, बिजली विभाग होता है, इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट, वो लोग बताते हैं कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का नया स्रोत है। तो हमें भी क्या करना है, इस स्विच को क्या करना है, मुख से हमारे से व्यर्थ न निकले। इसलिए बाबा ने भी दो दिन पहले कहा था कि क्या करो, स्विच लगा दो, वो ऑफ रहे, स्विच ऑन नहीं रहे। थर्ड पॉइंट है आप ब्राह्मण आत्मा बहुत बहुत भाग्यवान हो, माना अपने स्वमान को हमें सदैव याद रखना है कि हम भाग्यवान हैं। अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए और दुनिया वाले बच्चों को समय कराएगा, उनको समय कराएगा, और हमको, हम तो क्या हो गए, मेहनत से छूट गए। तो नर्सों का स्लोगन क्या था, हाँ तो क्या हो जाएगा, हाँ मेहनत से मुक्त होना है तो क्या करो, मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। अगले पॉइंट में तो हम मजबूरी से नहीं कर रहे हैं, हम क्या है, मोहब्बत के झूले में झूल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है कि हमें बाबा ने कहा कि बाप तो तैयार है मदद देने के लिए, लेकिन आप लोगों को आदत पड़ी है 63 जन्मों की किसके पास जाने की, दो हाथ वालों के पास जाने की, मनुष्यों के। बाप तो खड़ा है लेकिन हमें आदत जो पड़ी है वो हमें बार बार मनुष्यों के पास ले जाती है। तो देहधारी से कि ये जो संस्कार है देहधारी से मदद लेने का, इसको भूलना है और एक बाप से सच्ची मदद लेनी है। फिफ्थ पॉइंट है इस दुनिया में सुनने सुनाने वाले अनेक हैं, सुनने और सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन आप हो कोटों में कोई। तो हमें क्या करना है जीवन में, हम जैसे बाबा ने कहा कि जैसे ब्राह्मण सुनते हैं सुनाते हैं लेकिन धारणा के समय कम पड़ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि धारणा करनी है, सुनने सुनाने वाले तो दुनिया में बहुत हैं। सिक्स्थ पॉइंट है चाहे कितनी रावण रूपी संस्कार वाली आत्मा हो लेकिन उसके प्रति आपकी शुभ भावना और शुभकामना, शुभ भावना हो। तो यहाँ पर बाबा ने माताओं का उदाहरण दिया है। माताएं बोल देती है कि ये फलाना हमारा संबंधी है, ये तो पक्का रावण है ना, बहुत विघ्न डालता है। तो बाबा ने कहा कि ऐसी भी आत्मा क्यों न हो, रावण पक्का, लेकिन आपको क्या करना है, उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना ही रखनी है। और अगला पॉइंट है सेवंथ पॉइंट, जब बाबा महाराष्ट्र वालों से मिल रहे हैं, उसके पहले भी बाबा दिल्ली और अन्य ग्रुप से मिल रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि आप कौन हो सभी, मधुबन निवासी, यहाँ कोई राजस्थानी महाराष्ट्रियन या कोई मध्य प्रदेश का नहीं है, यहाँ जो भी है सभी मधुबन निवासी है। और बाबा ने कहा है कि अपनी ऐसी ऊंची स्थिति में, ऊंची स्टेज में स्थित रहो तो माया आपके नजदीक आ ही नहीं सकती। आपको बाबा ने इतनी ऊंची स्टेज दी है, इतनी ऊंची स्थिति दी है, तो उसमें स्थित रहो, जो माया आए और दूर से ही चली जाए। और भी कई बातें इस मुरली में बाबा ने कही है कि माया के पास तीन और बातें हैं, कौन सी, एक तो पहनना, खाना और तीसरा है देखना। तो उसके पास भी ये ऑफर लगा हुआ है, अंतिम लुभाव ने ऑफर है कि आओ और बस दो घंटे में खत्म होने वाला है। तो जैसे माया क्या कर देती है, उमंग उत्साह ला देती है, तो वैसे भी हमें अपना उमंग उत्साह नहीं कम करना है, बेहद के वैरागी हम जब दुनियावी चित्र देखते हैं तो कोई साधु सन्यासी बैठा हुआ है, उसके है ना लंबी जटाएं है, लंबी दाढ़ी है, तो उदासी रूप नहीं धारण करना है, बड़े उमंग उत्साह से हमें तपस्या करनी है, वैरागी बनना है। लेकिन कैसे वैरागी बनना है? इस माया की ऑफर से हमें बचना है, और बाबा की जो ऑफर है उसमें हमें फंसना है, लगन में मगन रहना है। फिर बाबा ने दादियों से भी बात कही है, तो इसमें बाबा ने कहा है कि अष्ट भी हो और इष्ट भी हो, तो ये बात बाबा ने स्मृति भी दिलाई। फिर बाबा ने कहा था कि आप आदि हो, आदि शब्द का बाबा ने यहाँ पर बताया कि धारण करने में आदि बनना है। जैसे ही आदि रतन बाबा ने कहा आप भी बन सकते हो, सिर्फ दादिया या जो उस समय आए थे वो आदि रतन है, आप कैसे बन सकते हो कि बाबा ने कहा और उसको करने में मैं आदि। आदि शब्द वैसे मराठी में होता है माना पहले, आदि माना पहले, तो पहले मैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा की दी हुई जो श्रीमत है, आज्ञाएं है, उसको पहले मैं करूं, दूसरा करे और बाद में मैं करूं नहीं, तो पहले मैं करूं। तो हमें आदि रतन बनना है। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। 7 दिसंबर 1983। श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का आधार मूल्य। श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का आधार मूल्य। तो आज से 7 साल पहले जब हम सेंटर में नए गए थे ना, तो एक बुजुर्ग माता थी बहुत पुरानी, तो उसने हमको डरा दिया कि बाबा पहले ना मूल्य सुनाता था तो इतने कड़े शब्द होते थे कि आजकल तो बहुत नॉर्मल शब्द होते हैं बाबा के। तब से हमने सोच लिया कि बाबा यही नए नए पढ़ेंगे, पुराने में ध्यान नहीं देंगे। जब हमको ये टॉपिक मिला ना, तो जिंदगी में पहली बार हमने इतनी बार वो मूल्य पढ़ी। तो उसमें था, तो देखो शब्द तो बहुत कठिन है, लेकिन अपने अनुसार हमको हम उनको सरल करने जो समझा है उसको हम आपको बताते हैं। तो मुरली दूध है। अब मुरली दूध है, कोई बच्चे उसका मक्खन बना देते हैं, कोई दूध बना देते हैं, कोई दही बना देते हैं, कुछ छाछ बना देते हैं, और कुछ मन मत मिक्स करके, खट्टापन मिक्स करके पानी भी बदल देते, उसको फाड़ डालते, तोड़ फोड़ कर देते। हाँ, तो मक्खन कई बोलते हैं कि भाई दूध, किसी अंधे व्यक्ति से पूछा दूध क्या है भाई, तो उसने कहा भाई कि दूध सफेद चीज है। अब वो पूछा भाई सफेद चीज क्या है, तो बोले बदक देखा हाँ? तो वो अंधे व्यक्ति को बदक बोला इतनी कठिन चीज नहीं खानी चाहिए हमको हाँ? जे जगदीश भाई का हमने कुछ सुना था, तब उनने बताया था कई कठिन बना दिया था हमारे जीवन में मूल्य अव्यक्त वाणी को। टॉपिक मिला तो सरल हो गया हाँ? वो ही वही चिंतन चल रहा था, और जीवन में इतना चिंतन नहीं चला। दोपहर को जाते थे सेवा करके और सीधे बिस्तर में ओम शांति हो जाते। कल 2 बजे से कंटिन्यू आज तक जाग रहे, सोया ही नहीं, रात से जाग रहे। पहले जब से मुरली का टॉपिक मिला उसके पहले अमृत वेला के लिए हमको युद्ध करना पड़ता था, बहुत युद्ध करना पड़ता था उठने के लिए, और फिर भी उठ जाते थे ठीक। और जब से यह टॉपिक मिला ना, तो युद्ध युद्ध छोड़ो, सीधे बाबा कमरा दिखता है, क्योंकि वहीं चिंतन चलता है, उसके अलावा कहीं नहीं चलता। और श्रेष्ठ पद की प्राप्ति तो ठीक कहें, हमें इधर प्राप्ति करा रहा ना, इधर पहुंचा दिया मुरली ने, इधर प्राप्ति करा दिया, और हमारे जीवन का आधार ही मुरली था। हमारी लौकिक माता जी जो थी ना, गांव में रहते थे, क्योंकि जो अव्यक्त वाणी हमने पढ़ी उसमें बाबा ने कहा गांव के लोगों को देख के बाबा ना बहुत खुश होते हैं, तो अचानक स्मृति में वो चीज याद आ गई, माता जी हमारी लौकिक ज्ञान में आई। पहले कोई ऐसा कोर्स नहीं था ज्ञान में आने का, वो अपने ससुराल गई थी, 60 किलोमीटर दूर है शहर में था, उधर एक सेंटर था बस। तो वहां दीदी की पालना ऐसी ली कि बाबा की बन गई और धारणा में चलने लगी। जब घर पहुंची वो वापस, जब व्यक्ति चलना शुरू होता ना तो बहुत सारे टेस्ट आते। जैसे ही ज्ञान में आई नहीं, उसके 6 महीने बाद ना पिताजी की मौत हो गई अचानक एक्सीडेंट में। अब संघर्ष और बढ़ गया। जब पिताजी की मौत हुई उसके बाद हमारा 1 महीने बाद जन्म हुआ। उससे पहले 3 भाई बहन थे हमारे, हम आए जब तो 4 हो गए। जिम्मेदारी बढ़ गई। 4 का भी बहुत बड़ा तगड़ा रोल है जीवन में। कोई फैसला हो जीवन का तो 4 करते हैं और अंतिम यात्रा भी 4 सफल करते हैं, वो अलग फैसला है उसका। 4 हो गए तो परिस्थिति डबल हो गई, बढ़ गई। जब 4 हो गए और धारणा में जब व्यक्ति चलने लगता है तो फिर उसके साथ परेशानी खान पीन की आ गई। खान पान मेरी नहीं, माता जी की बता रहा हूं। माता जी की ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनको अलग कर दिया उनके सास ससुर ने कि भाई आप बनाते नहीं हो, खाते नहीं हो, ना खिलाओगे तो कैसे चलेगा। उनको जो गाय रहती ना, गाय पालते हैं, 15x15 का रूम दे दिया। उधर 4 लोग, 10 साल लगातार 10 साल तक उनने बिना कोई सेंटर, सिर्फ एक ही उनका जीवन का आधार था मुरली। तो वो अचानक शब्द हमको स्मृति में आए इसलिए सुना पा रहे हैं। नहीं तो सोचता कुछ हूं ड्रामा में कि राज में कुछ पॉइंट लिखी थी हो कुछ और गया, यहां कुछ और सोच के आया था, लंबी लिस्ट बनाई थी वो सब फ्लैश हो गया। तो जीवन का एक मुरली 3 महीने में, इतना आर्थिक संपन्न न होने के कारण उन 3 महीने में एक बार जाती थी मुरली लेके आती थी, और 5वीं तक पढ़ी हुई थी। मुरली फिर भी मुरली पढ़ लेती थी, और जब हम उतना याद नहीं है, उनने कभी बताया नहीं, उनके अनुभव से हम ज्ञान में आ गए। उनके जो त्याग तपस्या देखी, उनके जीवन में परिवर्तन देखा, एक साधारण महिला को इतना करते हुए देखा जीवन में संघर्ष, लगभग 25-30 वर्ष तक संघर्ष करते हुए उनको देखा, तो अचानक हमको भी लगा कि ये इनको चलाने वाली कोई आम शक्ति नहीं है, ये ईश्वर ज्ञान जो ये बाबा शब्द कहते हैं ये जादू है, ये बाबा बहुत जादू है। तो जब हम 5वीं कक्षा में थे तो हमेशा जो मम्मी थे हमारे वो यही सिखाते थे बाबा बाबा और मुरली के अलावा हमने 10 साल तक और कुछ सुना ही नहीं, बाबा और मुरली। तो बाबा उनने सिखाया हमको। तो एक बार होमवर्क करके नहीं गए, टीचर सबको मार रहे थे बहुत तेज तेज, लाइन लाइन बाई लाइन। अब मेरे पास तक बारी आने वाली थी, मेरे तक बारी आने, मेरे पहले वाला तक पहुंच गया था। अब याद आ गया बाबा जादू है, बाबा जादू है बहुत तेज। जीवन भर कभी याद नहीं किया था, उस समय याद कर लिया। मतलब स्मृति बिल्कुल पहुंच गई बाबा जैसे, बिल्कुल हाँ बाबा। जीवन में कोई जब डूबता हुआ आदमी तो वो ये बाबा ही याद आया, और बाबा जैसे ही बाबा बोला घंटी बज गई छुट्टी। और उस दिन से बाबा ऐसा घुस गया अंदर कि आज तक नहीं निकला। टाइम हो गया है शायद, अब शांत। हमारे जीवन का आधार ही मुरली थी। अच्छा, तो उसमें था विधि पूर्वक, एक शब्द बाबा ने यूज किया है बुद्धि पूर्वक और नियम पूर्वक। एक बुद्धि पूर्वक जो बच्चे होते हैं ना वो सीधे सीधे समा लेते हैं, वो बात विवाद में नहीं पढ़ते हैं ऐसा क्यों ऐसा क्यों। और एक और चीज याद आ गई हमको कि कल हम जिंदगी में कभी हमको कविता न याद रहती थी ना कभी पढ़ने शौक था, कल एक कविता याद आ गई कि यही वो बसेरा है जहाँ राम का, यही वो जगह है जहाँ राम का बसेरा है।
तो मतलब
बहुत सारी चीजें हमको समझ में आ गई। तो वो मुरली का ही आधार था। चार्ट कभी जीवन में 2012 से लिख रहे हैं, कभी 3 महीने में लिखते हैं, कभी 6 महीने हो जाता है। और जो उस दिन सुनाया आज तक मिस नहीं हुआ, डर ऐसा घुस गया। तो जो मुरली की पॉइंट तो साथ क्या कहें कि बहुत सारी इतने चिंतन किए कि वो एक और चीज बाबा ने बहुत गहरी कही थी कि क्रोध आना चाहिए। अब आप बोलोगे ये क्या बात सुनाते, क्रोध आना चाहिए, अपनी बुराइयों पर क्रोध करना है तो सहज माया जीत बन जाएंगे। और एक और चीज बाबा ने बोली थी कि जो बच्चों को बोलते हैं कि छोड़ना है वो छोड़ते नहीं है, और जिसको कहते हैं कि इसको जोड़ना है उसको जोड़ते नहीं है। मतलब छोड़ना बुरी चीजें हैं और योग जोड़ना है तो वो करते नहीं है। ठीक है, पॉइंट तो बहुत सारी हैं लेकिन स्मृति में विस्मृति हो गई है। ठीक है, ओम शांति।